जय गोपी जन है वाला भो जया गिरी वर धरी जय गोपी जन वाला भो जया गिरी वर धरी शोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता था रूप अध्याय कितना अध्याय सात श्लोक संख्या है 31 से 23 21 से 23 है। हाँ मुझे ही बताया गया था, मैं उसको पुश करना चाहता था आप लोगों के द्वारा कि आप लोग क्या बताते हैं। 21 से 23 है, सबने निकाल लिया 21 में। तो आप लोग कैसे करते हैं, मैं बोलूँगा आप लोग दोहराएंगे है ना, फिर सब लोग तो नहीं बोलेंगे ना क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग बोलने का है, मेरे पीछे एक बार बोलेंगे ठीक है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यः। शब्दार्थ बोली यहाँ यहाँ जो जो याम याम जिस जिस तनुम देवता के रूप को भक्तः भक्त श्रद्धया श्रद्धा से अर्चितुम पूजा करने के लिए इच्छति इच्छा करता है तस्य तस्य उस उसकी अचलाम स्थिर श्रद्धाम श्रद्धा को ताम उस एव निश्चय विदधामि देता हूँ अहम मैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशिष्ट देवता की भक्ति कर सके। तो श्लोक को समझेंगे, तात्पर्य पढ़ने से पहले, तात्पर्य तो पूरा नहीं पढ़ सकते ना, पूरा पढ़ना तात्पर्य या थोड़ा 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 ना। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता है ना, यो यो का मतलब है जो जो है ना, याम याम जिस जिस देवता का भक्त हो है ना। तो भगवान भगवान एक हैं और देवता अनेक हैं, तो यहाँ पर भगवान ये संकेत कर रहे हैं ना, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति श्रद्धा पूर्वक पूजा करने की इच्छा करता है ना। तो किसी की इच्छा होती है किसी विशेष देवता की पूजा करने की है ना, तो किसी एक देवता की है ना, तो जीव जो है किसी एक का ही भक्त बन सकता है ना। कोई कृष्ण का भक्त बनता है तो अपनी श्रद्धा को स्थिर करता है कृष्ण के प्रति, और कोई किसी अन्य देवता की का भक्त बनना चाहता है ना, तो वो उस देवता में ही, यहाँ पर मुख्य बात भगवान बता रहे हैं कि किसी एक देवता, कोई व्यक्ति जो है किसी एक देवता में अपनी श्रद्धा को स्थिर करना चाहता है कि श्रद्धा पूर्वक मैं इसी देवता की पूजा करूँ है ना, उसकी इच्छा होती है मैं इस देवता का भक्त बन जाऊँ है ना। तो भगवान कह रहे तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्य हम, उस उसकी अचल श्रद्धा को उस देवता के प्रति मैं ही स्थिर करता हूँ। स्थिर करने वाले तो भगवान हैं, भगवान ही हैं है ना। तो यहाँ पर भगवान का बहुत बड़ा त्याग पता चलता है कि भगवान का कितना बड़ा त्याग है ना। वास्तव में तो भक्ति का अर्थ है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई दूसरी भक्ति का कोई दूसरा अर्थ होता नहीं है। लेकिन फिर भी जीव के अंदर भौतिक इच्छाओं के कारण है ना, यहाँ तो पिछले श्लोक भगवान ने बता दिया कि काम है तहते हित ज्ञाना, उसका ज्ञान अपहृत हो चुका है कामनाओं के द्वारा ज्ञान अवृत हो चुका है ना। तो वास्तव में वो भक्ति नहीं कहलाती, भक्ति नहीं कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर भौतिक कामना है ना। तो भौतिक कामनाओं से जो है किसी देवता की वो अगर पूजा करने की इच्छा करता है तो कामनाएं पूरी करने के ही लिए करता है, तो वो भक्ति जो है स्थाई नहीं है, भक्ति स्थाई नहीं है, क्योंकि मुख्य उसका जो लक्ष्य है वो कामना है कि भौतिक कामना मेरी पूरी हो, है ना। तो फिर भक्ति कैसे होगी, है ना। तो वास्तव में देवताओं की भक्ति हो नहीं सकती, तो भौतिक कामना है तो भक्ति कैसे हो सकती है। फिर भी उसकी इच्छा है कि मैं श्रद्धा पूर्वक पूजा करूं। क्यों श्रद्धा पूर्वक, कि श्रद्धा के बिना कामना पूरी नहीं होगी आप समझ रहे तो वो श्रद्धा पूर्वक उस देवता की पूजा करने की इच्छा कर रहा है, लेकिन वास्तव में श्रद्धा हो नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो उसकी श्रद्धा तो कामनाओं में है कि भौतिक कामनाएं मेरी पूरी हो। तो श्रद्धा उसकी किस में है, कामना की पूर्ति में है, उसकी श्रद्धा तो इंद्रिय तृप्ति में है ना, देवता में कहाँ है। लेकिन वो जो है श्रद्धा पूर्वक उस देवता की पूजा करने की इच्छा कर रहा है, क्यों, क्योंकि अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो भगवान कहते मैं सहायता करता हूँ उसकी, तो मैं उसकी सहायता करता हूँ है ना। उतने समय के लिए श्रद्धा उसकी स्थिर कर देता हूँ मैं, कितने समय के लिए, जितने समय तक जो है उसकी कामना पूर्ति नहीं होती। और जब कामना पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप क्या बोलते हैं, गुड बाय, वो तो होगा ही, वो तो होना ही है, है? किसी भी देवता से अगर आपका जो है कुछ है, कामना है, तो वो कामना की पूर्ति के बाद तो फिर आप उससे नमस्कार करेंगे भाई, अंतिम नमस्कार, अलविदा, क्या बोलते हैं, अलविदा, तो वो तो होगा ही है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं, है ना। तो है तो अज्ञान, ये अज्ञान पर आधारित है, क्योंकि भगवान ने पहले पिछले श्लोक में कह दिया कि ज्ञान उसका अवृत हो चुका है, ज्ञान अवृत हो चुका है, इसलिए मुझे छोड़ करके अन्य देवता की पूजा करने की इच्छा कर रहा है ना। असंभव, संभव नहीं है। कृष्ण के साथ ही हम भक्ति का संबंध बना सकते हैं और किसी के साथ नहीं बना सकते, कि कृष्ण ही प्रेम करते हैं और कृष्ण ही प्रेम देने वाले हैं। तो कृष्ण में जो प्रेम है वो अन्य देवताओं में थोड़ी है प्रेम, है ना। अन्य देवताओं के साथ तो केवल व्यापार का संबंध होता है, लेना और देना, है ना। तो अब हम प्रभुपाद सुने, प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं पहले वाक्य में, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, क्योंकि कृष्ण चूंकि प्रेम करने वाले हैं और प्रेम में बल प्रयोग नहीं होता। कृष्ण अगर हमसे प्रेम करना चाहते हैं तो वे हमारे ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे कि मुझसे प्रेम करो, आप समझ रहे हैं। आप किसी से भी प्रेम करें तो सबसे पहली शर्त प्रेम की क्या होती है, कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके ऊपर आप बल प्रयोग नहीं कर सकते कि वो आपसे प्रेम करें, है क्या नहीं। तो कृष्ण चूंकि प्रेम, कृष्ण के अंदर प्रेम है, तो इसलिए वे जीव को स्वतंत्रता देते हैं कि वे कि जीव कृष्ण से प्रेम करे या ना करे। और ऐसी स्थिति में जीव स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और वो प्रेम करना चाहता है अन्य देवताओं से, तो प्रेम तो हो नहीं सकता। कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहते आप, तो अन्य देवताओं से प्रेम कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता। वो चाहता है तो भगवान कहते हैं मैं सहायता करता हूं उसकी, है ना। तो यहां पर ऊपर लिखते हैं कि परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। आगे समस्त जीवों के परम पिता के रूप में भी उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, है ना। जैसे पिता है ना, तो पिता जो है बच्चे से प्रेम करता है, तो पिता बच्चे के ऊपर बल प्रयोग नहीं करता कि तू मेरी सेवा कर, तू मुझसे प्रेम कर, प्रेम में कैसे हो, है ना। और पिता क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है, बच्चे के प्रेम का, पिता के प्रेम का वो गलत फायदा उठाता है और वो घर छोड़ देता है, पिता को छोड़ देता है, है ना। तो ऐसे में भी पिता चूंकि प्रेम करता है तो उस बच्चे को जो है बल प्रयोग नहीं करता है कि तू घर में वापस आ, हाँ, और मेरे साथ रहे, बल्कि उसकी खबर लेता है। तो परमात्मा के रूप में भगवान जो है जीव के हृदय में बैठे और उसकी फिर भी सहायता करने के लिए रहते हैं, है ना। और बच्चा जो है अपना घर छोड़ करके जो है जंगलों में भटक रहा है या सड़कों में मारा मारा फिरता है ना, तो पिता जो है फिर भी उसकी खबर रखता है कि कहाँ है, क्या कर रहा है ना, और प्रतीक्षा करता है कि कब ये मेरे पास आएगा। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है यहाँ बता रहे हैं, है ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परम पिता के रूप में भी उनके स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु तो उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। आगे कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। अच्छा प्रश्न है, हैं? क्या प्रश्न है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है ईश्वर, प्रश्न उठेगा ही कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हैं? तो जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं, क्यों गिरने देते हैं, है ना। एक अच्छा प्रश्न है ना। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, क्या इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, स्वतंत्रता। तो प्रेम में जो है एक बहुत बड़ा जो दोष समझे या जो भी समझे, कमजोरी समझे, वो यही है, ये प्रेम की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि कृष्ण प्रेम करते हैं जीव से तो जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते हैं, और जीव स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और कृष्ण को छोड़ देता है और इस माया में गिरता है। तो ये प्रेम का जो है मतलब गुण है या दोष कहो या जो भी कहो, ये है तो प्रेम का ही, प्रेम का अर्थ ही है कि स्वतंत्रता में बाधा ना डाले, है कि नहीं। एक जो है ना एक बड़ा बहुत बड़ी एक समस्या है प्रेम में, प्रेम में बहुत बड़ी समस्या है ना। तो जहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, हैं, सोचिए कितनी गहराई है इस बात में कि जो प्रश्न उठता है वो भी सही है प्रश्न, कि भगवान ने हमको क्यों जाने दिया, वो तो सर्वशक्तिमान है, हैं? वे बल प्रयोग करके हमको रोक सकते हैं, हम क्यों माया में गिरे और इतने कष्ट हम क्यों भोग रहे हैं, है ना। और ईश्वर के ऊपर बहुत दोष लगाते हैं, हैं? ईश्वर का ही पूरा पूरा दोष है कि हम जो है मतलब माया में गिरे, हमने ईश्वर को छोड़ दिया, हैं? तो हमारा क्या दोष, हम तो जो है नहीं समझे, नहीं समझते थे कि क्या परिणाम होगा, ईश्वर जानते हैं सब कि क्या परिणाम है, तो उनको उन्होंने हमको क्यों गिरने दिया, है ना। लेकिन यहाँ पर उत्तर भी जो है बड़ा गहरा है, उत्तर भी बड़ा गहरा है, क्या उत्तर है,
स्वतंत्रता, प्रेम, प्रेम चाहते,
प्रेम में स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता दी जाती है, प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है। अगर कृष्ण हमारी स्वतंत्रता में बाधा डालें तो फिर उनका प्रेम नहीं कहलाएगा, है ना। ये देखो मतलब कितना एक कारण ऐसा बन गया, जिससे कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बुरा परिणाम, परिणाम भी बहुत खराब है, है ना? लेकिन परिणाम किस चीज का है? प्रेम का, कृष्ण प्रेम स्वरूप। सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही सब कारणों के परम कारण है, तो कृष्ण का प्रेम ही कारण है कि कृष्ण प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते, है ना? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। लेकिन उपदेश वो दे रहे हैं, उपदेश वो दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं? भगवद गीता में दे रहे हैं, है? सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता में उनका उपदेश है। अभी हमारी कमी है, कृष्ण में तो प्रेम है, तो कृष्ण के प्रेम में कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कमी है कि हम कृष्ण के प्रेम को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण के प्रेम का गलत फायदा उठाते हैं, तो हमारी कमी है। तो यहां पर ऊपर लिखते हैं, उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा, है? इसलिए गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भी कृष्ण कहते हैं, इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, कि मैंने गुप्त से अधिक गुप्त ज्ञान बता दिया, विमृशयतत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, अब तो अच्छी प्रकार विचार करके जो चाहो वैसा करो। तो कृष्ण ने गीता में फिर स्वतंत्रता दी है कि अब तुम्हारी जो इच्छा है जो करो। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरे शशि, मुझ में चित्त लगाओगे तो मेरी प्रसन्नता से सब कठिनाइयों को पार कर जाओगे। अतचे तम अहंकारा न सो शशि विनंथसी, अहंकार के कारण नहीं मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो मैं तुम्हें बल प्रयोग नहीं करूंगा कि मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे पर बल प्रयोग नहीं करूंगा कि तुम मेरी बात मानो, तो कृष्ण आपके ऊपर कोई बंधन नहीं डालते हैं, है? है? लेकिन अगर नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, कृष्ण कहते हैं, है ना? तो अब अगला श्लोक करेंगे, श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम इहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। सह वह तया उस श्रद्धया, श्रद्धा से युक्त युक्त तस्य उस देवता की आराधनम पूजा के लिए इहते आकांक्षा करता है, लभते प्राप्त करता है च तथा ततः उससे कामान इच्छाओं को मया मेरे द्वारा एव ही विहितान व्यवस्थित ही निश्चय ही तान उन ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो तात्पर्य से पहले हम फिर समझेंगे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, सतया श्रद्धया योक्ता, तो वो व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त हो गया। तो वो श्रद्धा भी उसको कैसे प्राप्त हुई, भगवान ने, है ना, कृष्ण ने ही उसकी श्रद्धा स्थिर की थी, तो श्रद्धा से युक्त हो गया वो, इसलिए श्रद्धा से युक्त हो गया, उसकी अपनी श्रद्धा नहीं है, कृष्ण ने ही उसको श्रद्धा प्रदान की है। श्रद्धा से युक्त हो गया तो तस्य आराधनम ई हेते, अब इच्छा करता है आराधना करने की, इच्छा करता है आराधना करने की, तो आराधना भी वो नहीं कर सकता है, इच्छा करता है आराधना करने की। अभी श्रद्धा पाना चाहता था तो श्रद्धा भगवान ने दे दी, अब श्रद्धा से युक्त हो गया, अब आराधना करना चाहता है ना, तो भगवान उसकी आराधना भी पूरी कराते हैं। और लभते चाहता था कामान, तो फिर उस देवता से उन कामनाओं को प्राप्त करता है। मय विहितानिदान, मेरे द्वारा ही वो दिए गए हैं, वो भोग भी मेरे ही द्वारा दिए गए हैं, है ना, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, उस देवता के माध्यम से मैं ही दे रहा हूँ उसको, भगवान कह रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते, है ना, जी भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, क्योंकि देवता ऐसे नहीं भूलते, देवताओं में जो है विशेषता है। तो जीव जो है सोच रहा है कि मैं देवता से प्राप्त करूंगा, और उस देवता के प्रति उस श्रद्धा की भावना भी पैदा कर लेता है, कैसी श्रद्धा कि ये देवता ही सर्वोच्च है, वो देवता के प्रति वो श्रद्धा भी विकसित कर लेता है कि ये देवता ही सर्वोच्च है, है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जीव तो कृष्ण को भूल जाता है, भले जीव भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता ऐसे नहीं भूलते। देवता क्या नहीं भूलते कि कृष्ण ही सर्वोच्च है, देवता नहीं भूलते, क्या नहीं भूलते कि कृष्ण ही सर्वोच्च है, देवता नहीं भूलते इस बात को, है ना। आगे प्रभुपाद कहते हैं, अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अभी तो उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो देवताओं के माध्यम से भगवान ही दे रहे हैं, भगवान डायरेक्ट नहीं देते, कृष्ण डायरेक्ट नहीं देते, भोगों को डायरेक्ट नहीं देते कृष्ण। क्यों नहीं देते डायरेक्ट, क्योंकि भगवान देखते हैं कि मैं इसको भोग दूंगा तो ये भक्ति से भटक जाएगा, भक्ति से दूर हो जाएगा। तो कृष्ण तो भक्ति देना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं, तो इसलिए जो है कृष्ण से उसको भौतिक कामनाएं नहीं पूरी होती। कृष्ण पूरी करते हैं भौतिक कामनाएं, लेकिन वहां तक कि जिसमें भक्ति में बाधा ना आए, जहां भक्ति में बाधा आती है, रजोगुण तमोगुण में है व्यक्ति, तो कृष्ण उसकी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करते हैं कि उससे और अनर्थ पैदा होंगे। तो इसलिए वो जीव जो है कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करता है कि भाई मुझे जो है ना कृष्ण से वो नहीं पूरी होंगी। लेकिन कृष्ण अगर भौतिक कामनाएं पूरी करते हैं, अगर देखते हैं कि भक्ति में बाधा नहीं है, जैसे ध्रुव महाराज को कृष्ण ने क्या दिया, भौतिक भोग दिए कि नहीं दिए, है ना, पूरे 36,000 साल तक तो तुम मैं पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करो, है ना, उसके बाद मेरे धाम में भी आओगे, है ना। लेकिन पहले चेतना शुद्ध हुई ध्रुव महाराज की और कामना नष्ट हो गई, तब कामना पूरी की, ध्रुव महाराज की फिर भौतिक कामना नहीं रही, है ना, और कृष्ण जो है उनकी कामना पूरी की। तो ध्रुव महाराज को जो है पहले जब शुद्धिकरण हो गया और वे समझ गए कि कृष्ण की सेवा ही सर्वोच्च वरदान है, तब कृष्ण ने उनकी वो भौतिक कामना भी पूरी की। तो कृष्ण भौतिक कामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन जिनके अंदर ईर्ष्या है दूसरे प्राणियों के प्रति, है ना, और वो उन वरदानों का दुरुपयोग करेंगे तो कृष्ण उनको ऐसे वरदान नहीं देते, है ना, लेकिन देवताओं से मिल जाते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं समझ, इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं आवश्यकता अगर पड़े तो याचना करता है लेकिन वरदान नहीं मांगता, अंतर है। शुद्ध भक्त का लक्षण वरदान मांगना नहीं है, याचना करना है, अंतर है, अंतर है। आवश्यकता पड़ने पर याचना करना शुद्ध भक्त जो है मतलब कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर याचना कर सकता है शुद्ध भक्त, है जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार याचना कर सकता है, लेकिन वरदान नहीं मांगता हमेशा के लिए नहीं। आवश्यकता तो मतलब कभी पड़ती है, आवश्यकता हमेशा थोड़ी पड़ती है, तो आवश्यकता के अनुसार कुछ याचना कर सकता है कृष्ण से, लेकिन वरदान हमेशा के लिए कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और मेरे पास ये शक्तियां आ जाएं कि फिर जो है मुझे कृष्ण से मांगना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए मैं जो है स्वतंत्र हो जाऊं, तो वो जो है ये वरदान। असल लोग ऐसे वरदान मांगते हैं कि भाई हमेशा के लिए कुछ चीज मिल जाए कि मुझे मांगना ही नहीं पड़े, फिर क्यों बार बार मांगूं, हैं, और नाक रगड़ूं, गिड़गिड़ाऊं। तो ये जो है मतलब उनको बड़ी नफरत होती है इस चीज से कि झुकना और नाक रगड़ना, है ना, प्रार्थना करना, मांगना, याचना करना, भीख मांगना, है ना, कुछ शक्ति प्राप्त कर लो बस, फिर जो है फिर झुकने की जरूरत ही नहीं, फिर हमको झुकने की क्या जरूरत है, शक्ति मिल जाए हमको, स्वतंत्र हो जाएंगे हम, तो वो वरदान। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, याचना करेगा क्योंकि वो हमेशा आश्रित रहना चाहता है, तो उसको याचना करने में शर्म नहीं आती है, शुद्ध भक्त को शर्म नहीं आती याचना करने में, क्योंकि वो जो है आश्रित है, तो याचना करने में उसको शर्म नहीं आती, है ना। लेकिन असुरों को जो है शर्म आती है, बड़ी बड़ी शर्म की बात है हम याचना करें, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात, हम क्या हैं है ना, हम वरदान मांगेंगे और वरदान मांगेंगे फिर याचना करने की जरूरत नहीं, फिर आपसे भी याचना की जरूरत नहीं, आपके सामने भी अकल करके बात कर सकते हैं कि मुझे क्या समझा है तो वरदान, उसको वरदान कहते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, उसे कोई शर्म नहीं है, जब जरूरत होगी तो भगवान से याचना करेगा, है ना, क्योंकि वे हमेशा स्वामी हैं और हम उनके हमेशा सेवक हैं, है ना, याचना करता है। लेकिन वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है कि हमेशा के लिए मुझे मांगना ना पड़े, आप ऐसा करो, तो ये वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पगलाए रहता है, पगलापन है उसका, क्योंकि देवता से मैं वो शक्ति प्राप्त कर लूंगा, फिर देखता हूँ कौन मेरे सामने आता है, फिर किसकी हिम्मत है मेरे सामने आने की, मैं ऐसा वरदान प्राप्त कर लूंगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने जो है अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी भाई अमरता का वरदान नहीं मिल सकता, तो फिर उसने सब तरह की संभावनाएं में जो है उसने मांग लिया कि मैं ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं। अब क्या होता है, अब ब्रह्मा जी से मुझे क्या जरूरत है, मैंने ब्रह्मा जी को भी मूर्ख बना दिया और क्या प्राप्त कर लिया, अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। अगर दिन में भी ना मरूं और रात में भी ना मरूं तो फिर कब मरूंगा जमीन में ना मरूं, पानी में ना मरूं, आकाश में ना मरूं तो फिर कहां मरूंगा, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं तो फिर कहां मरूंगा तो फिर तो वो बहुत खुश हो गया कि मैंने देखो कैसा मूर्ख बनाया ब्रह्मा जी को है, और मैंने पाली अब शक्ति पाली, अब कौन है मेरे सामने है जो कि सिर उठा सके मेरे सामने, अकड़ के बात कर सके, कौन है? मैं सबके सामने अकड़ सकता हूँ, कौन मेरे सामने अकड़ सकता है? तो ये वरदान है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है, ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। तो भगवान ही पूरा करते है ना। जैसे एक बच्चा को जो है क्या सोचता है कि चाकू मुझे मिल जाए किसी प्रकार से, बस चाकू मिल जाए तो जैसा चाहूँ फिर मैं अपना उसका उपयोग करूँगा, चाकू से कोई भी चीज़ काट सकता हूँ है ना। और पिता से मांगेगा तो पिता जो है 10 बार पूछेगा कि क्यों मांग रहे हो, क्या करोगे, क्या करना है, क्यों क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों तो 10 बार जो है पूछेगा, तब कहीं चाकू थोड़ा सा छूने के लिए देगा और फिर छीन लेगा। पिता उसके हाथ में चाकू नहीं देगा है। लेकिन दुकानदार के पास जाएगा बच्चा और पैसे देगा तो दुकानदार क्या करेगा, दे देगा चाकू, उसको तो पैसा चाहिए। ऐसे देवता की पूजा करोगे और वो वरदान दे देंगे, उनको पूजा चाहिए और वो वरदान दे देंगे। अब आप उसका दुरुपयोग करेंगे और करेंगे ही दुरुपयोग। बच्चा जो है कि हाथ में चाकू आएगा तो क्या करेगा, दुरुपयोग ही करेगा कि नहीं, क्या करेगा, दुरुपयोग ही करेगा, किसी को मारेगा या अपने को मारेगा, निश्चित है वो अपने को घायल करेगा या किसी को घायल करेगा, और कुछ है हो नहीं सकता सेवा दुरुपयोग के। तो भगवान तो नहीं देंगे उसको वरदान है ना, देव तरफ वरदान देते हैं है ना। तो इस तरह से जो है, अच्छा अब आगे अगला श्लोक है, अंतवत्तो फलम तेसाम तन्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव्य जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत् नाशवान तो लेकिन फलम फल तेसाम उनका तत् वह भवती होता है अल्पमेधसाम अल्पज्ञों का देवान देवताओं के पास देवयजहा देवताओं को पूजने वाले यान्ति जाते हैं मत मेरे भक्ताः भक्तगण यान्ति जाते हैं माम मेरे पास अपि भी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बहुत मतलब जो है बड़ी अद्भुत यहाँ जो है भगवान बात बताते हैं, क्या अंतवत्तु फलम ते साम तद भवति अल्प मेध साम। उनका दिमाग बहुत कम है अल्प मेध साम है ना, तो उनको जो कुछ भी फल प्राप्त होते हैं देवताओं के द्वारा वो सब अंतवत् होते हैं। अंतवत् का मतलब है अंत से युक्त, अंत से युक्त, क्योंकि शरीर जिस शरीर में उन्होंने प्राप्त किया इसी शरीर में प्राप्त करते हैं वो फल, इसी शरीर में वो फल प्राप्त कर लेते हैं, वरदान प्राप्त कर लेते हैं इसी शरीर में, तो वरदान इसी शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, वो वरदान उनको इसी शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वरदान जो मांगा था वो क्या मांगा था, इसी शरीर के लिए वरदान मांगा था, आप समझ रहे क्यों, तो वो वरदान जन्म जन्म के लिए क्यों नहीं मांगते, वो ऐसा वरदान जो है जन्म जन्म के लिए क्यों नहीं मांगते। हिरण्यकशिपु ने जो है ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो क्या जन्म जन्म के लिए मांगा था, कि प्रत्येक जन्म में ऐसा हो, मरना नहीं चाहता ना आप समझे तो ये सोच करके वो वरदान मांगते हैं कि मुझे मरना नहीं है, तो फिर अगले जन्म में फिर वरदान क्या होगा, रहेगा क्या? तो उसने नहीं मांगा था कि अगले जन्म में रहे वरदान, तो वो ये सोच के वरदान मांगता है कि मैं नहीं मरूंगा, ये सोच के मांगता है। भक्त क्या मांगता है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतम, भरना तो है, इसी जन्म जन्म के लिए मांगता है वरदान। चैतन्य महाप्रभु हैं शिक्षा शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतान भक्ति रहे, तो जन्म जन्म मेरी आपके प्रति अहेतु की भक्ति रहे। तो वो जो देवताओं से वरदान मांगते हैं वो कभी नहीं मांगते जन्म जन्म के लिए, नहीं जन्म जन्म के लिए मांगते, या तो वे ये सोच करके ऐसा ही वरदान मांगते कि हम मरे ही नहीं, या फिर कोई वरदान मांगते भी हैं तो ये दिमाग में विचार रहता है कि मैं नहीं मर, मुझे नहीं मरना नहीं है, हाँ? ऐसे सामान्य व्यक्ति के अंदर भी ऐसा ही अज्ञान रहता ना, हाँ? कि मुझे मरना नहीं है, और रोज लोग देखते हैं कि भाई मर रहे हैं लोग, लेकिन मेरा स्पेशल केस है मेरा स्पेशल केस है ना। तो ये जो है अंतवत्तु फलम ते साम, जैसे हिरण्यकशिपु ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, ये मर गया तो अब वो दोबारा अब अगले जन्म में क्या दावा कर सकता है ब्रह्मा जी से कि मैंने वरदान आपसे मांगा था, हाँ, तो इस जन्म में क्यों नहीं वो वरदान अब लागू हो रहा है, हाँ? क्या वो दावा कर सकता है ब्रह्मा जी से कि मैंने पिछले जन्म में आपसे जो है वरदान मांगा था और उस जन्म में वरदान मेरा जो है केवल 5 साल ही रहा, क्योंकि प्रहलाद महाराज 5 साल की अवस्था के थे तभी नरसिंह भगवान ने उसको खत्म कर दिया, मार डाला, और कितना उसने तपस्या की थी 100 वर्ष देवताओं के, 36,000 साल मनुष्यों की 36,000 साल तक तपस्या की थी, और वो वरदान मांगा और वो वरदान 5 साल तक ही केवल रहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया तो 5 साल अब वो कहे कि मैंने इतनी तो तपस्या की थी आपसे वरदान मांगने के लिए हैं, और 5 साल नहीं जो है वो खत्म हो गया, हाँ, ऐसा क्यों वो वरदान मेरे मुझे फिर से मतलब बिना तपस्या की मुझे मिलना चाहिए, वो कह सकता है? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता, कहेगा, वो कहेगा कि मैं इतने तपस्या की आपसे वरदान मांगा अब वरदान क्यों नहीं मेरे ऊपर लागू हो रहा है, वो नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि वो भूल चुका है, अब कुछ कुछ याद ही नहीं है। अब अगला जन्म रावण हिरण्यकशिपु ने अगला जन्म रावण के रूप में लिया था तो फिर से तपस्या करी फिर से तपस्या करी क्योंकि वो उसे कुछ याद नहीं है, उसने नहीं मांगा था, हाँ, कि मैं मुझे मुझे याद रहे, लेकिन भक्त मांगते हैं, भक्त मांगते हैं क्या कि आपके चरणों को मैं कभी ना भूलूं। अब स्मृतिस्तु चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात, कि आपके चरणों की जो स्मृति है वो जन्म जन्म मेरी रहे बनी रहे। भक्त मांगता है जन्म जन्म। तो शरीर छोटे में कोई उनको परेशानी नहीं होती, अगर आपके चरणों की स्मृति रहे, आपके चरणों को मैं याद रखूं, तो किसी भी होने में जन्म ले कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंद महाराज भी कहते हैं नंद महाराज जो प्रार्थना करते हैं ना तो वो क्या कहते हैं कि वो श्लोक कैसा है जिसमें वो कहते हैं कि यत्र कापि स्वेच्छया मंगलाचरितैर्दाने रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र कापि स्वेच्छया, अपने कर्म के अनुसार जो है हम जो भी जन्म लें जहां यत्र क्वापि, जहां भी जन्म लें, जो भी जन्म लें, ईश्वर की इच्छा से अपने कर्म के अनुसार। कर्म फिर ब्राह्म माण आया नाम यत्र क्वापि सुरेशिया मंगलाचरित दाने रतिर्ना कृष्ण ईश्वरे। तो हमारा जो भी मंगल और आचरण हुआ है, दान जो हमने किया है, उसका हमें फल क्या मिले, कृष्ण नामक ईश्वर में हमारी आसक्ति बनी रहे, कृष्ण नामक ईश्वर में हमारी आसक्ति बनी रहे। तो ये जो है मतलब नंद महाराज का, नंद महाराज की प्रार्थना है ना। तो इसलिए उनको जो है भक्ति जो है जन्म जन्म उनको प्राप्त होती है ना, लेकिन इनको जो है नहीं होती। जैसे वो था ब्रकासुर था, ब्रकासुर ने शिवजी से वरदान मांगा, ब्रकासुर ने शिवजी से वरदान मांगा है, तो 7 दिन तक लगातार शरीर का मांस काट काट करके आग में डालता रहा और वरदान मिल गया। क्या वरदान मिला, जिसके सिर में हाथ रख दूं भस्म हो जाए। तो किसी के सिर में हाथ नहीं रख पाया, अपने ही सिर में हाथ रखा उसने और 5 मिनट में ही हो गया, उसका शरीर नष्ट हो गया है। अब अगले जन्म में क्या वो वरदान रहेगा उसके, कि वो जिसके सिर में हाथ रखे, चला गया वरदान अब वो कह नहीं सकता, दावा नहीं कर सकता, क्यों, उसे पता ही नहीं है कि अब कि मैं कौन हूं, पिछले जन्म में मैं कौन था, तो दावा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो है अल्प मेधसाम दिमाग बहुत कम है उनके पास, उनका दिमाग बहुत कम है, तो इतना परिश्रम किया, सोचिए 5 मिनट के लिए केवल उसने वो थोड़ा दादागिरी करी, 5 मिनट की दादागिरी करी उसने, और अंत में क्या हुआ वरदान समाप्त हो गया है। अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवत अल्प मेधसाम है ना। तो आगे प्रभुपाद देखते हैं तात्पर्य में, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। अब देखिए प्रभुपाद जो बता रहे हैं बहुत समझने वाली बात है। भाष्यकार गीता की टीका करने वाले भी जो है, और कितनी अज्ञान गीता की टीका, गीता के कितने भाष्य ऐसे हैं जिनमें की इतनी गलत है, मतलब निष्कर्ष, इतने गलत निष्कर्ष लिखे, जबकि भगवान कह रहे हैं देवान देव जो जानती, देवताओं की पूजा करने वाले ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पाएंगे तो देवता के लोक में जाएंगे, उसी देवता के, और मेरे भक्त मेरे धाम में आएंगे, तो कितना अंतर है, देवताओं के लोक में जाएंगे और मेरे भक्त मेरे धाम में जाएंगे है ना। तो जो ऐसा कहते हैं कि किसी भी देवता की पूजा करें आपको एक ही लक्ष्य मिलेगा, एक ही परिणाम प्राप्त होगा, ये कितना गलत है। भगवान तो कह रहे हैं स्पष्ट कहें, देवान देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे धाम में आएंगे। जो देवताओं के भक्त हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे, अगर उनको कुछ ऐसा मिला तो वही देवता के साथ ही उनकी मतलब श्रद्धा बनी रही अगर, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ अगर उनको मिलेगा तो क्या मिलेगा, उसी देवता के लोक में मिलेगा, लेकिन वो तो नष्ट होना है, अंत में नष्ट होना है। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद्गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के बाहर पहुंच सकता है, किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। इसी क्या है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। तो यहां पर भगवान जो है मतलब क्या बता रहे हैं, लेकिन हाँ देवताओं की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है अगर भौतिक कामनाएं ना हो तो। अगर भौतिक कामनाएं ना हो तो देवता की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है ना। उसमें भगवान जो है सत्वगुणी यज्ञ बताते हैं, सत्वगुणी यज्ञ में देवताओं की पूजा करते थे, बड़े बड़े राजा लोग भी करते देवताओं की पूजा है ना, लेकिन वो देवताओं को भगवान से स्वतंत्र मान करके नहीं पूजा करते थे, देवताओं के भक्त नहीं बनते थे। जैसे नंद महाराज इंद्र की पूजा कर रहे थे तो कृष्ण तो पूजा बंद कराई है ना, लेकिन ये जो पूजा इंद्र की जो भगवान ने बंद कराई वो इंद्र के कारण बंद कराई कि इंद्र अपनी पूजा समझ रहे हैं, इंद्र अपनी पूजा समझ रहे हैं है ना। लेकिन नंद महाराज की ओर से कोई मतलब उसमें दोष नहीं है क्योंकि वे इंद्र के भक्त नहीं है, इंद्र से कुछ उनको लेना देना नहीं है, पूजा करना चाहिए थे पूजा कर रहे थे। अफल आकांक्षी फिर यज्ञो विधि दिष्टो यजते, बिना फल की आकांक्षा के हाँ विधि शास्त्र विधि के अनुसार कोई पूजा करता है। यजेष्टव्यमेवेति मना समाधाय सात्विकाय, यजेष्टव्यमेवेति मना समाधाय सात्विकाय, पूजा करना चाहिए इसलिए पूजा मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो देवताओं का भक्त नहीं होता है, देवताओं की पूजा करता है लेकिन भक्त नहीं है। लेकिन यहाँ तो भगवान उसकी बात करें जो यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया चतुमिच्छति, उस देवता के प्रति श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है देवता का भक्त बन करके। लेकिन नंद महाराज इंद्र के भक्त बनकर के इंद्र की पूजा नहीं कर रहे थे, इंद्र की पूजा कर रहे थे कि पूजा करना चाहिए इसलिए कर रहे थे, इंद्र के भक्त नहीं थे वो, न इंद्र से उन्हें कुछ लेना था है ना। लेकिन भगवान ने पूजा क्यों बंद कराई, इंद्र को कुछ शिक्षा देने के लिए, इंद्र जो समझ रहा है कि मेरी पूजा है मैं स्वतंत्र हूं, तो वो चीज जो है ऐसे प्रभुपाद कहते हैं देवता लोग जो है मतलब ऐसी गलती करते नहीं लेकिन कभी कभी करते हैं गलती, कभी कभी ऐसी गलती करते हैं है ना। तो इंद्र इंद्र गलती कर रहे थे इसलिए भगवान ने, तो भगवान देख रहे हैं कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो उनके भाव में कुछ गलत नहीं है, उनका उनका भाव गलत नहीं है कि वे इंद्र के भक्त हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि इंद्र के अंदर जो है एक गलत भाव पैदा हो रहा है कि मेरी पूजा हो रही है ना। तो इंद्र को जो है इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने पूजा बंद कराई। तो कितने सालों से पूजा चली रही है, कितने सालों, कई सौ सालों से पूजा चल रही थी उनके वंश में, तो वो कुछ इंद्र के भक्त थोड़ी थे कि इंद्र के लोक में गए हों नंद महाराज है। तो नंद महाराज की आयु 88 वर्ष की थी जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो कितने सालों से पूजा हुई इंद्र की, तो कुछ उसमें कोई क्या कुछ दोष हुआ इंद्र की ओर से कोई दोष नहीं हुआ, नंद महाराज की ओर से कोई दोष थोड़ी हुआ कि इंद्र की पूजा से उनका जो है कुछ अलग भाव बना हो, वैसे तो नहीं था। तो ये जो है मतलब यहाँ समझना है। तो हाँ यहाँ मैंने हो गया, तो अब एक आध प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि 8:15 बज गया अभी ना, तो किसी कोई प्रश्न है, हाँ जी बोलिए।
यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, लेकिन बोलते सारे आप देखेंगे बहुत सारे पूजा होते हैं, क्या वो सारे पूजा बंद कर देनी चाहिए,
ऐसा है कि अभी हमारा जो प्रचार है वो इस प्रकार का नहीं होता कि हम मतलब सबको मना करें कि भाई ये पूजा ना करो। कोई भी पूजा जो है हम एकदम से मना नहीं करते और किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा, तो हम किसी के मन को धक्का भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो है जो प्रचार होता है वो क्या होता है कि भाई इस हरे कृष्ण मंत्र को आप जोड़ दो, आप जो भी पूजा करते हो तो इस हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करो, ठीक है ना। हम ये कहते हैं। और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, है ना। तो ये तो हम किसी भी देवता की अगर पूजा करें तो हम जो है अगर यही मांगे कि मुझे जो है कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए, है ना, तो वो पूजा जो है आपकी सफल है। आप समझ रहे हैं। तो हम जो है किसी भी देवता की पूजा, अगर मान लो देवी का मंदिर है, हैं, देवी का मंदिर है, तो वहां भी हम प्रणाम कर सकते हैं उनको, लेकिन किस भाव से कि कृष्ण की शक्ति है, सृष्टि स्थिति सकल है, सृष्टि स्थिति साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाए व्यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। अब दुर्गा का प्रणाम मंत्र ये है, ब्रह्म संहिता में दुर्गा देवी का प्रणाम मंत्र है ना, क्या कि जिन गोविंद की जो है ये शक्ति है दुर्गा, जो पूरे जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है, और छाया के समान ही उनकी जो है मतलब छाया के समान छाया व्यस्त भूमना नहीं विभर्ति दुर्गा, उनकी इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करती है, तो ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ तो दुर्गा को भी जो है वो ऐसे प्रणाम करते हैं, है ना। शिव जी को भी प्रणाम कर सकते हैं, है? तो ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हे तो यह सम्भुताम अपि तथा समवेदिकार्यात गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो दूध जैसे खटाई के विकार से दही के रूप में परिणत हो जाता है, तो इस तरह से जो है कोई भी देवता को हम कृष्ण का सेवक मान करके और कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है ये मान करके और उनको उनका ऊंचा स्थान मान करके उनका आदर कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए।
समस्याएं तो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है, जब से हम लोगों ने जन्म लिया कोई ना कोई समस्या चलती जाती है, और उनको पूर्ण करने के लिए शांति का लोग यही समझते हैं कि देवी देवता पर जाए, कृष्ण भगवान तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएं?
नहीं, यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यकता भगवान अपने भक्त की आवश्यकता पूरी करते हैं, लेकिन कामनाएं पूरी नहीं करते। एक कामना होती है, कामना का अंत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आवश्यकता तो भगवान पूरी करते हैं अपने भक्त की, और भक्त का जो कष्ट है संकट है वो दूर करते ही हैं। द्रौपदी का संकट भगवान ने दूर किया कि नहीं। गजराज एक हाथी है, उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो उसने भगवान को पुकारा। तो कितने ऐसे उदाहरण हैं, और भगवान हमारे जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ कि रक्षा करते हैं, तो भगवान तो रक्षा करते हैं, है ना। लेकिन मतलब कुछ ऐसे भी मतलब अगर भगवान ने रक्षा नहीं की, कुछ कष्ट अगर उन्होंने दिया, तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि कृष्ण जो है इसमें भी मेरा भला ही चाहते हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासः, शरणागति के छह लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण ये भी है कि वो रक्षा करेंगे, ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि वो रक्षा करेंगे, ठीक है ना। तो जो भक्त है वो हर स्थिति में वो कृष्ण में जो है विश्वास करता है, और कृष्ण का दिया हुआ मान करके वो कष्ट भी जो है स्वीकार करता है, इसलिए सुख दुख में समान रहना एक ये भी जो है मतलब भक्ति का लक्षण है। हाँ जी जी।
तो जो डिवोटीज है हम लोगों को जीवन का लक्ष्य के बारे में ये पता है कि जीवन का लक्ष्य जो है मनुष्य जीवन का वो मोक्ष प्राप्ति है, या जीवन मरण के चक्र में से निकलना और भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण मोक्ष से भी ऊपर भक्ति को प्राप्त करना, या मोक्ष प्राप्ति के द्वारा इस चक्र में नहीं फंसना, इसमें से निकलना। पर बाकी संसार में ज्यादातर लोगों को ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ज्यादातर लोगों को जो लक्ष्य है वो अपनी डेली जो इच्छाएं हैं या भौतिक इच्छाएं उसकी पूर्ति करना का ही लक्ष्य है, तो
वही ऐसा है ना कि इसलिए हम जो है सबसे पहले जो है लोगों को कुछ अगर बताते हैं तो ये बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर बदलते हैं है? और कर्म के अनुसार हमको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं तो उनकी पूर्ति के साथ साथ हमें अगले जीवन के लिए भी सोचना है कि अगले जीवन में हमें क्या गति प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवद्गीता पर आधारित है ये आंदोलन, भगवद्गीता पर आधारित है और भगवद्गीता की जो है जो प्रारंभिक बातें हैं उनका आधार हम लेते हैं, है ना। तो जो आधार है अभी नहीं जो आधार है वो भगवद्गीता का ये होता है हमारा। सुना ध्यान से सुनिए, भगवद्गीता का जो है जो प्रारंभिक उपदेश है भगवान का वो हमारा आधार होता है कि शरीर जो है नष्ट होता है और आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान ने इसको बार बार समझाया। इस पर ज्यादा विचार करिए तो जितने प्रवचन होते हैं इस पर ज्यादा हम जोर देते हैं, बार बार इस पर जोर देते हैं और इस चेतना से जो है हम आपको ऊपर उठाते हैं जो देहात्म बुद्धि की चेतना है, इससे ऊपर उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जो है जितने भी श्लोक गीता में मिलते हैं जो कि आत्मा से संबंधित है, शरीर से अलग है जीव, तो कहीं भी मिलता है तो प्रभुपाद के तात्पर्य हमेशा मिलते हैं और भागवतों में भी देखे हैं, कहीं भी देखे हैं, तो इस पर जो है प्रभुपाद जरूर तात्पर्य देंगे। जबकि इसमें लोग सोचते हैं अरे ये तो हमने समझ लिया, अब आगे आप आगे बताइए, इस श्लोक पर तात्पर्य हमेशा प्रभुपाद देते हैं कि हम ये शरीर नहीं, इस चेतना से आपको ऊपर उठना है ना। इसलिए आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, आप माला जाप करिए, ज़्यादा हम इस पर जोर देते हैं कि आप माला जाप करो, है ना। और किसी भी हालत में आप जो है नियम को मत छोड़िए, है ना। जब आप 16 माला जप करना ही है और हर हालत में करना है, चाहे और कोई काम हो या ना हो, ये 16 माला जप करना ही है तभी आपको दीक्षा देंगे, है ना। तो बहुत मतलब कठोर एक जो है ये नियम है कि आपको जो है इससे बांधा गया है, क्यों, शरीर की चेतना से ऊपर उठाने के लिए, है ना। तो ये ठीक है, धन्यवाद। अब मैं प्रश्न नहीं लूंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिष्य गौर निताई की जय।
हरे कृष्ण, जी को बहुत धन्यवाद। कुछ नाम है शायद, कृपया ध्यान सुनिएगा।